राजयोग शिविर के अंतर्गत आज चौथा सत्र है। समय का चक्र या काल चक्र का महत्व। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने गीत सुना, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। और शायद आज हर मनुष्यात्मा जीवन का खेल हंसते हंसते ही खेलना चाहते हैं। परंतु कहना पड़ता है, परंतु कई बातें आ जाती है बीच के उसमें कि जब हम हंसते हंसते खेलते हुए भी कई समस्याएं या कई परिस्थितियों के तनाव में आ जाते हैं और वो स्ट्रेस हमारी वो खुशी को गायब कर देता है। और इसीलिए फिर वही जीवन चक्र के अंदर आ जाते हैं जहां तनाव, उदासी, निराशा, हताशा इन बातों से घिर जाते हैं। और उस समय एक प्रश्न मनुष्य के मन में बार बार उत्पन्न होता है, वो है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने किसी का कुछ बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और भगवान भी मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? ये सवाल उत्पन्न होता है, आता है, और उसका जवाब मिलता है। और जब जवाब नहीं मिलता है तो उस समय एक फ्रस्ट्रेशन अंदर से क्रिएट होता है, भगवान भी ऐसा करता है, भगवान तो सब कुछ जानता है, देखता है, फिर वो ऐसा क्यों करता है? आज उन सभी प्रश्नों का जवाब इस सत्र के अंदर है कि जिसको कहे कि कई जो उलझे हुए सवाल है मन के अंदर, उन सभी उलझनों का एक सुलझा हुआ जवाब मिलेगा। लेकिन उसके लिए समय का चक्र कैसे चलता है, ये काल चक्र कैसे फिरता है और ये काल चक्र हमें क्या कह रहा है? आज दुनिया में भी समय के विषय में बहुत कुछ कहा हुआ है, वहां तक कि मैनेजमेंट में भी महत्वपूर्ण विषय अगर हो गया तो वो है टाइम मैनेजमेंट। लोग समय को मैनेज करना चाहते हैं और उसके लिए कई लोग टिप्स देते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा अपने सारे दिन का प्लानिंग कर लो, प्रायोरिटी को आगे रखो और उसके बाद एक एक चीज को करना आरंभ करो तो मैक्सिमम समय का सदुपयोग कर पाएंगे। परंतु कई चीजें समय के चक्र में ऐसी आ जाती है जिसके विषय में हमने सोचा भी नहीं होता है। कई परिस्थिति, समस्याएं ऐसी आ जाती है कि वो प्रायोरिटी वाला जो लिस्ट है वो बाजू पर रह जाते हैं या इसमें से एक दो चीज कर पाते हैं, फिर ऐसे उलझन में पड़ जाते हैं वो परिस्थिति समस्या को लेकर के, और दिन के अंत में अपनी उस डायरी को अगर देखते हैं तो लगता है आज फिर एक दिन ऐसा ही चला गया, दो तीन चीजें कर पाए, आगे कुछ नहीं कर पाए। तो समय के लिए यही कहा, समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। समय वास्तव में हमें समय प्रति समय कुछ संकेत देता है, उन संकेतों को समझना पड़ता है। वास्तव में समय हमसे कुछ मांग करता है, टाइम डिमांड्स समथिंग फ्रॉम अस। And what does time demand? टाइम डिमांड्स रिस्पॉन्स। हम लोगों से समय एक प्रतिउत्तर की मांग करता है और उसके लिए समय संकेत भी देता है कि क्या करना चाहिए या किस प्रकार का प्रतिउत्तर हमें देना है। जो उन संकेतों को समझ पाते हैं और उस अनुसार प्रतिउत्तर को देता है, समय उसको जीवन में आगे बढ़ा देता है। परंतु जो समय से विपरीत दिशा में चलता है, उन समय के संकेतों को समझ नहीं पाता है और गलत प्रतिउत्तर देता है या नकारात्मक प्रतिउत्तर देता है, तब वो समय बड़ा कठोर हो जाता है। तो समय किस प्रकार का प्रतिउत्तर हमसे चाहता है? समय के लिए यही कहा गया है कि समय तीव्र परिवर्तन का चल रहा है। टाइम इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। समय नित्य परिवर्तनशील है और इसलिए समय हमसे भी परिवर्तन की ही प्रतिउत्तर की अपेक्षा रखता है। इसीलिए इंग्लिश में बहुत सुंदर कहा हुआ है, इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। समय की मांग है परिवर्तन। अगर समय के हिसाब से परिवर्तन किया तब तो समय हमें आगे बढ़ा देगा, लेकिन अगर समय के हिसाब से परिवर्तन को नहीं अपनाया गया तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं परिवर्तन करने की, समय की मजबूरी है, परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। और उसके बावजूद भी अगर परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया तो समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है। वो काल तो क्या महाकाल का रूप भी ले सकता है। इसीलिए समय को समझने की आवश्यकता है। कई बार कई बुजुर्ग लोग जब किसी बच्चे को कोई शिक्षा देने का प्रयत्न करते अपने अनुभव से और वो बच्चा नहीं सुनता है, तब लोग यही कह देते हैं, अब समय उसको पाठ पढ़ाएगा तब ये समझेगा, समय की थपेड़े खाएगा तब सुधरेगा। लेकिन समय हमें सुधारे तो शक्तिशाली कौन हुआ, हम या समय? इसीलिए समझदार इंसान है तो जब समझदार इंसान है तो समय से पहले परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाना ये समझदारी है, नहीं तो समय का पंछी उड़ जाता है और उड़ने के बाद मनुष्य सोचता रह जाता है ये करते थे ऐसा करते थे, लेकिन अब तो समय का पंछी उड़ गया। तो इस संसार में समय के साथ हर चीज परिवर्तनशील है, तभी कहा परिवर्तन ये कुदरत का नियम है। परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा, लेकिन अब का समय हमसे क्या परिवर्तन की अपेक्षा रख रहा है ये समझना है। तो समय एक चक्र में चलता है, इसीलिए कहते हैं टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक पैटर्न। समय लीनियर नहीं है, बिगिनिंग और एंड इस तरह समय नहीं चलता है। टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक पैटर्न और इसीलिए समय के चक्र में हर चक्र भी साइक्लिक पैटर्न में ही चलता है। दिन और रात का चक्र देखो, वो भी नित्य चलता रहता है। ऋतुओं का चक्र देखो, नित्य चलता रहता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र देखो नित्य चलता रहता है। और कुदरत की साइकिल को अगर देखा जाए, पानी वैपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समुद्र में आके मिल जाता है। ये चक्र भी चलता रहता है। कुदरत का हर चक्र नित्य चलता है, कोई भी चक्र बंद नहीं होता है। भावार्थ, इसकी आदि और अंत कहां है पता ही नहीं। दिन और रात की शुरुआत कब हुई थी? रात को 12 बजे, सुबह 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे? Nobody knows। हां, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है रात को 12 बजे ही शुरू हुआ था। इसी तरह ऋतुओं के चक्र की शुरुआत कब हुई थी पता ही नहीं। मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए साल के चक्र में 1 जनवरी से नया साल कह दिया। इसी तरह हर चक्र को अगर देखा जाए तो किसी भी चक्र की आदि और अंत नहीं है, इसीलिए उनको कहते ही है अनादि, जिसकी आदि और अंत नहीं है, अनादि। तो ये समय का चक्र भी अनादि चलता रहता है, लेकिन हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र को देख लिया जाए, उसमें भी चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र में देखो तो उसमें भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। इसी तरह मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी चार अवस्था, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। ऐसे ही इस काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहते सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र अनादि है। कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा, कोई मनुष्य का काम नहीं है। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात्रि सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। कुदरत की रचना में सेटिंग इस तरह से है कि धीरे धीरे वो घोर अमावस्या की रात भी सुनहरी सुबह में बदलनी ही है, कोई इंसान का काम नहीं है इसमें। ठीक इसी तरह ये घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में, उस स्वर्ण काल में परिवर्तित होना ही है, क्योंकि ये कुदरत की रचना है। ये किसी मनुष्य के कहने पर या मनुष्य के करने पर परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई चाहे या न चाहे। कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग आना ही है, क्योंकि ये नेचर की साइकिल है। लेकिन उस नेचर की साइकिल में हमें किस प्रकार का परिवर्तन को अपनाना है ये हमें समझना है, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है उसमें से सहजता से हम बाहर आए, नहीं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत दर्दनाक हो सकता है। तो ये चक्र किस तरह चलता है? चार अवस्था जरूर है उसमें, लेकिन हर चक्र की एक अवधि जरूर है, एक ड्यूरेशन पीरियड जरूर है। दिन और रात के चक्र का ड्यूरेशन पीरियड है 24 घंटा, उसी में ये चक्र कंप्लीट हो जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि है 1 साल, उसी में ये चक्र कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है कि एक काल चक्र 5000 साल का है, परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं तो कई लोगों के मन में कई सवाल आ जाते हैं। कहां लिखा है, किसने कहा, कैसे मान ले, व्हाट इज द प्रूफ, है ना? वैसे देखा जाए तो प्रूफ किसी भी बात का नहीं है। 24 घंटे का दिन और रात का चक्र है, ये दिन और रात का चक्र 24 घंटे का किसने बनाया? जिसने भी बनाया, 60 seconds इज इक्वल टू 1 मिनट और 60 minutes इज इक्वल टू 1 आवर, और इस तरह ये दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया। लेकिन ये 60 फिगर कहां से आया, कहां से आया, उसका कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं। हमने स्वीकार कर लिया, हमने क्या सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया कि 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। अगर 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? चलता ही था, घंटे कम हो जाते थे। वो दिन और रात का ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 20 घंटे में बांटो, 22 घंटे में बांटो, 24 घंटे में बांटो या 25 घंटे में बांटो, दैट वॉज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। वो तो उतना ही था, लेकिन ये 60 फिगर कहां से आया और क्यों आया, कभी किसी ने सवाल नहीं किया। और अपने जीवन को 24 आवर्स के साइकिल के हिसाब से ढाल दिया, ढाल दिया, कभी कोई सवाल नहीं पूछा। तो 24 घंटे कहां से आए उसका कोई सबूत नहीं है, ना कोई क्वेश्चन है। कई चीजें इस संसार में ऐसी है, उसको स्वीकार कर लेता है इंसान। या जैसे एलजीब्रा के अंदर जब थियरम सॉल्व करना होता था, सपोज एक्स इज इक्वल टू 5000 करके तो देखिए, शायद हमको आंसर मिल जाए, है ना? सपोज एक्स करके देख। इसी तरह अगर देखा जाए साल का चक्र कितने दिन का है, 365 दिन का। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा 365 दिन का साइकिल है। और इसी तरह 365 दिन को 12 मास के अंदर डिवाइड कर दिया, 12 मंथ्स दे दिया, और सारी दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया, इंग्लिश कैलेंडर बन गया। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस जब भारत ने विश्व को 0 दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी डेवलप हुआ। अगर भारत 0 देता ही नहीं था तो मॉडर्न साइंस कहां से आता था? उस जमाने का साइंस। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते हैं? 354 days। अब 354 सही है या 365 सही? कैन एनीबडी प्रूव इट? कौन सा सही है? अधिक मास आता है इसीलिए सही है। ये तो इतना लॉजिक नहीं हुआ, कि 3 साल के बाद अधिक मास आ जाता है इसलिए सही है। भावार्थ मेरा ये है कि हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है और जिस तरीके से ये कैलकुलेट किया गया है कि हर अमावस्या और पूर्णमासी समुद्र का पूरा पानी उछलता है ज्वारभाटा के रूप में, हर बार इतना एक्यूरेट है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब बताया जाता कि सोलर इक्लिप्स और न्यूनर इक्लिप्स कब है, एक्यूरेट, समय का भी एक्यूरेसी है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर बताया जाता कि ये साल अधिक मास है इसीलिए बरसात 1 महीना पीछे जाएगी तो एक्यूरेट 1 महीना पीछे जाती है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अकाल घोषित कर देंगे, कोई सबूत ही नहीं है उनके पास में। फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? इंग्लिश कैलेंडर को। कभी सवाल किया? नहीं। और भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं ताकि दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर और अपना त्योहार मुहूर्त जो कुछ निकालना हिंदू कैलेंडर के ऊपर। यह तो नहीं कहा इंग्लिश कैलेंडर सही है इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं। कई चीजों का सबूत नहीं होता है। सपोज एक्स, इसीलिए कहा 5000 साल का सबूत है हमारे पास में। हिंदू संस्कृति के हिसाब से एक एक युग लाखों साल का बता दिया। लेकिन अगर मैं यही सवाल पूछूं कि लाखों साल का एक एक युग, उसका कोई सबूत है? है ही नहीं। तो कैसे मान लिया बिना सबूत के कि एक एक युग लाखों साल का है? 5000 का सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? हिंदू शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए, महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। आज घर घर में क्या चल रहा है? चलता है? नहीं चलता है। महाभारत में जो पात्रों का वर्णन है, शकुनी जैसे पात्र आज के समाज में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? बहुत है। अगर एक शकुनी था तब भगवान आए और महाभारत युद्ध हुआ तो आज तो कितने शकुनी हैं? तो भगवान को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। तो हो गया 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर बताया जाता है कि हर 5000 साल में कयामत का समय आता है और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से बताया गया है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन एरा इज टू कम तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए, बीच में भारत में मायन कैलेंडर का बहुत चला था टीवी के ऊपर, दुनिया खत्म, डेट भी दे दिया था 21 दिसंबर 2012। मैं 2012 में जून में मेरा मेक्सिको जाना हुआ था और मुझे पता नहीं था कि वहीं मायन खंडर है जिस शहर में मेरा जाना हुआ था। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला। तो जब मैं वहां पहुंची तो बहनों ने कहा चलो हम मायन खंडर देख के आते हैं। हमने कहा चलो। तो जब गए तो एक मायन वंशज था जो हमारा गाइड था, वो सारा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा था। जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने उसको पूछ लिया स्वाभाविक रीति से कि भई आपके कैलेंडर के हिसाब से तो ये बताया है कि 21 दिसंबर को ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो वो हंसने लगा, बोला हमने तो ऐसा नहीं कहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने कहा हमारे भारत में तो रोज टीवी पर आता है कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएंगी, ये मायन संस्कृति कहती है। तो कहा नहीं, वो तो जो जिसने फिल्म बनाया ना उन्होंने उस चीज को बहुत हाईलाइट किया और वो चीजें वो दिखा रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। तो मैंने कहा फिर आपने क्या कहा है? तो कहा हमने तो ये कहा है कि हमारा कैलेंडर है 5000 साल का और 21 दिसंबर 2012 को ये 5000 साल का कैलेंडर समाप्त हो रहा है और 22 दिसंबर से नया कैलेंडर प्रारंभ हो जाएगा, ये कहा है हमने। मैंने कहा तो फिर इतना ही उसको क्यों ये कर दिया इन लोगों ने? तो कहा नहीं, हमने ये जरूर कहा है कि इन पीरियड के बीच में मना ये जो ट्रांजिशन पीरियड है नया कैलेंडर शुरू जो होगा तो काफी परिवर्तन दुनिया के अंदर आएगा। उस बात को उन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि यही समय के दरमियान में बहुत परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होगी, इसीलिए इन्होंने विनाश दिखा दिया। बाकी विनाश नहीं, परिवर्तन है। तो हर धर्म 5000 साल का साइकिल है ये जरूर बताता है। कोई भी धर्म वाले लाखों साल का एक एक युग नहीं बताता है। तो 5000 साल का साइकिल जरूर है, इसलिए मैंने कहा सपोज x इज इक्वल टू 5000 करके देखिए, शायद आंसर मिल जाए। लेकिन तब फिर प्रश्न ये आता है कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है वो सही है या गलत है? वो भी सही है। क्यों? क्योंकि जैसे दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे दिन और रात का चक्र कितनी बार घूम चुका है? 2016 साल से हम गिनती कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात का चक्र चलता था या नहीं चलता था? चलता ही था। ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र कितनी बार घूम चुका है? अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, उसमें पत्थर मिलेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? करोड़ों साल पुराना पत्थर तो है ही ना। इसीलिए आर्कियोलॉजी वाले भी सही है और ये भी सही है कि एक काल चक्र 5000 साल का है। लेकिन इसी को अगर देखा जाए तो उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है। ये 5000 साल का काल चक्र स्वास्तिका के रूप में दिखाया। स्वास्तिका का निशान हिटलर भी बहुत मानता था और हिंदू धर्म में तो इसकी बहुत अहमियत है। क्रिश्चियन धर्म में उसको क्रॉस के रूप में दिखाया, चार भाग इक्वल। इस्लाम धर्म में भी स्वास्तिक आता है, जैन धर्म में भी स्वास्तिक आता है। भारत के अंदर जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका का निशान लगाया जाता है। सुअस्ति, स्वास्तिका संस्कृत के सुअस्ति शब्द से निकला है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। इसीलिए गीता के सार में हमें ये बात सुनने को मिलती है, भगवान वाच कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, तुम क्यों चिंतित हो? बुरा कुछ है ही नहीं। ये तीन महावाक्य के अंदर भगवान ने पूरा काल चक्र समझा दिया। जो बीत चुका वो भी बहुत अच्छा था, सुअस्ति, जो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए तुम चिंतित मत हो जाओ, माना स्ट्रेस में मत आ जाओ। और इसीलिए भारत के अंदर जब हर शुभ कार्य के लिए स्वास्तिका निकालते हैं, यानी ये घड़ी भी शुभ है, डोंट हैव एनी डाउट्स, पता नहीं ये समय अच्छा है नहीं अच्छा है, भगवान ने कहा अच्छा ही है, सुअस्ति, डोंट हैव एनी डाउट्स। भारत के अंदर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पहले तो स्वास्तिका निकालेंगे, फिर उसके ऊपर एक कलश रखेंगे, कलश के ऊपर फिर नारियल रख देंगे, है ना, और फिर पूजा आरंभ करते हैं। आप किसी भी पंडित से पूछो, भाई ये स्वास्तिका निकाला, फिर उसके ऊपर कलश रखा, कलश के ऊपर नारियल रखा, व्हाट डज दिस मीन, उसको पूछिए तो वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा आपके मतलब की बात नहीं है, हमें अपना मंत्र पढ़ने दो। शायद वो जानता ही नहीं है कि ये क्यों किया जाता है, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन क्यों ऐसे होता है आज हम आपको उसका रहस्य बताएंगे। स्वास्तिका निकाला, माना हर घड़ी शुभ है, ये घड़ी भी शुभ है, डोंट हैव एनी डाउट्स। उसके ऊपर कलश रखा, कलश यानी ये आकृति देखो कैसी है, कलश जैसी है ना, यानी ज्ञान युक्त बुद्धि से ये बात सोचने की है, ये कोई ब्लाइंड फेथ से सोचने की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान युक्त बुद्धि से, है ना, विजडम के साथ सोचो ये घड़ी भी शुभ है। और जब विजडम के साथ उसको सोच करके आप शुभ कर्म का आचरण करेंगे तो उसका फल कैसा होगा, फल श्रेष्ठ होगा। इसीलिए नारियल को कहते हैं श्रीफल, श्रीफल यानी ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर कर्म का आचरण करो विदाउट एनी डाउट्स या नेगेटिव थॉट्स, ये घड़ी भी शुभ है। और आप कोई भी शुभ कार्य करो तो शुभ कार्य का फल हमेशा श्रेष्ठ फल ही होता है। इसीलिए नारियल को कहते हैं श्रीफल, कि हमेशा श्रीफल, श्रेष्ठ फल की ही प्राप्ति होगी। विधि से करना होता है बस, ये इसका भावार्थ। लेकिन तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, अरे बहन जी, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी घटनाएं घटती है, बहुत बुरी होती है, उसको कैसे अच्छा माने। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई का कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में थे। जब हमें पता चला तो हमने सोचा चलो मिल के आते हैं, तो जब मिलने गए काफी लोग वहां थे, अब जाएंगे तो क्या कहेंगे, सहानुभूति के कुछ शब्द कहेंगे, तो हमने कहा भगवान को याद करो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही उस भाई को बड़ा गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है, बड़ा गुस्सा करने लगा। आश्चर्य लगा क्योंकि कोई नास्तिक नहीं बोल रहा था, भगवान में आस्था रखने वाला, और उसके मुख से ऐसी बातें निकल कर जब सुनी तो आश्चर्य तो लगा। आखिर हमें महसूस होने लगा कि जितना ज्यादा देर यहां खड़े रहेंगे भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, भगवान के नाम से बेटर है कि हम बाहर निकल जाएं। तो हम धीरे धीरे सरकते हुए बाहर आने लगे, है ना, बार बार एक ही बात कह रहा था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, दो पैर ही फ्रैक्चर हुए हैं, वो तो ठीक हो जाएंगे। जीवन तो बच गई लेकिन ये घटना उससे हजम नहीं हो रही थी। और इसीलिए जब बार बार ये बात, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा होना था, भगवान ने भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जैसे हम निकलते हुए बाहर आए तो उसकी वाइफ ने देखा तो वो तुरंत पीछे आकर के हमें हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन जी अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो इस वक्त आप इनकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना, इन्हें माफ कर देना, क्षमा कर देना। मैंने कहा एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या बात है जिनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई, एक कार एक्सीडेंट ही तो हुआ है। तो उस समय उस बहन ने मुझे कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या बात है? तो वो कोई लायंस का प्रेसिडेंट गवर्नर था या प्रेसिडेंट था, कुछ था, मतलब ये हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लायंस का या रोटरी का कोई गवर्नर था या प्रेसिडेंट था, कुछ था। और अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है, और जब उनका टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग है, होती है, तो उसको उस गैदरिंग में जाना था। परंतु 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हुए और दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब 10 दिन के अंदर तो ठीक होकर के जा नहीं सकता है। तो बार बार जब वो ये सोचता था, अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, और उसने समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए उसको अवार्ड मिलना था, तो वो सोचता था इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सब के बीच में मेरा सम्मान होता था, मुझे अवार्ड मिलता था, वो अवार्ड लेकर के मैं वापस इंडिया आता था, लोग मुझे यहां रिसीव कैसे करते थे, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये घटना हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए बार बार वो कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब उसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं था उस वक्त, हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, अरे क्यों भगवान को इतना गाली देता है, कर्म का हिसाब किताब भी तो हर एक का अपना होता है ना, वो तो भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आ गया, कर्म का हिसाब किताब मैं कहां मना करता हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था। लेता था ना, वहां से आने के बाद लेता था। आखिर हम तो वहां से चले गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था तो सोचा चलो बाबा का प्रसाद लेकर के जाते हैं, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति ठीक हुई हो। तो हम प्रसाद लेकर के गए, सुबह में कोई नहीं था, वो और उसकी वाइफ दो ही थे। जैसे ही हमको देखा तो वो भाई कहने लगा, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ है ना, उस दिन की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति, बड़ा खुश हो रहा था। उसने न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया कि जिस फ्लाइट में मैं जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए। उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा कि देखो बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। 10 दिन के पहले सवाल पूछ रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आज खुद जवाब देता है क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था, इसीलिए ऐसा हुआ था मेरे साथ, नहीं तो आज मैं उसी फ्लाइट में होता था। अगर एक पैर भी फ्रैक्चर होता था ना तो भी शायद मैं जाता था, लेकिन दोनों पैर फ्रैक्चर भगवान ने इसीलिए किया ताकि मैं जाऊं नहीं, मेरे अच्छे कर्म के कारण ही भगवान ने मुझे रोक लिया। और आज मुझे ऐसा महसूस होता है मुझे भगवान ने एक नया जीवन दान दिया है। इतनी अच्छी अच्छी बातें जब करने लगा तो उसकी पत्नी कहने लगी, बहन जी यही ज्ञान अगर 10 दिन पहले आ जाता तो कितना अच्छा होता था। उसकी पत्नी ने कहा, मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन अगर गए ना ये 10 दिन गए, इतना स्ट्रेस, क्योंकि जो भी आता था भगवान का नाम लेता था उसके साथ बस एकदम गुस्से में आ जाते थे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, न जाने भगवान को कितनी गाली दी होगी, है ना। और कभी कभी हरेक की सहन शक्ति एक जैसी तो नहीं होती है, कभी कभी तो इतना गर्म एटमॉस्फेयर हो जाता था कि मुझे एक एक को बाहर ले जाकर हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी। आप प्लीज उसकी बात का बुरा नहीं मानो, क्षमा कर, संबंध खराब हो जाने वाली बात हो जाती थी। उस सिचुएशन को संभालना मेरे लिए इतना स्ट्रेसफुल होता था। कहा मैंने जिंदगी में अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मांगनी पड़ी। मेरे जीवन के दिन सबसे बुरे जो गए ये 10 दिन गए। मैंने कहा बहन जी शुक्र करो समय का कि समय ने 10 दिन में पर्दा खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ है। जीवन की कई घटनाएं तो ऐसी होती है जिसका पर्दा समय 1 साल के बाद खुलता है। वो साल कैसा जाता है? साल के बाद हम यही कहते हैं अच्छा हुआ था, ऐसा हुआ नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता, कहते हैं ना। तो पहले ही अप्लाई करो ना। गीता के अंदर भगवान ने जब ये महावाक्य उच्चारण किए तो ऐसे ही थोड़ी किए हैं, हरेक के घरों में लगे होंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो होने वाला है बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन नहीं है। और एप्लीकेशन न होने कारण हम कितने दुखी हो जाते हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कितने सवाल मन के अंदर खड़े हो जाते हैं। अगर उसी वक्त ये अप्लाई किया जाए, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, तो गुस्सा आएगा, भगवान को गाली देंगे, अपने कर्मों को कोसेंगे नहीं, अनेक सवाल उठाएंगे उस घटना पर, कभी नहीं उठाएंगे। हर चीज के लिए एक धैर्यता रखने की आवश्यकता है। लेट टाइम रिवील, समय को अपने आप पर्दा खोलने दो, तब पता चलेगा कि क्या अच्छा हुआ है। इतने अधीर्य क्यों हो जाते हैं हम? इसीलिए गीता के सार में ये बात कही और आज के बाद ये सार को जीवन में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? करेंगे या गुस्से में, स्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, क्या करेंगे? अरे हमें अगर मालूम ही है कि अच्छा ही हुआ है तो गुस्सा आने का मतलब ही नहीं आता है, राइट? समय आने दो, समय अपने आप पर्दा खोलेगा, और समय का पर्दा खुलते ही वो सीक्रेट रिवील हो जाएगी कि क्या अच्छा समाया हुआ है। तो इसीलिए समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। हर अच्छा कर्म जो हमने किया है उसका फल अच्छा ही होगा, ये मान के चलो। तो ये चक्र किस तरह चलता है? 5000 साल का अगर काल चक्र है, 4 भाग में उसको डिवाइड किया है, 4 युग के रूप में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसका मतलब हर युग 1250 साल का है। ये शुरू कब हुआ ये तो मालूम नहीं, अनादि है, ये चक्र चलता रहता है। परंतु जिस तरह दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है, ठीक इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सतयुग को माना जाता है। सत्यता का युग, जहां स्वास्तिका का हाथ इस पोजीशन में है, राइट हैंड इस पोजीशन में, यानी आशीर्वाद के। जब संसार के अंदर हर आत्मा ब्लेसेड सोल के रूप में, हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी, इसलिए उसको कहा गया सत्यता का युग, जहां असत्यता का नामो निशान नहीं था। उस युग के विषय में यह भी कहा जाता है कि सूर्य वंश था, कि जैसे सूर्य की कला कम जास्ती नहीं होती है, ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है। हर आत्मा अपने परफेक्शन के रूप में थी, अपने परफेक्शन के स्वरूप में थी। उस युग के लिए बाइबल में बहुत सुंदर बात कही है जेनेसिस चैप्टर 1 में कि परमात्मा ने जब ये पहला पहर रचा था तो उस समय मनुष्य आत्माएं कैसे थे। तो जेनेसिस चैप्टर 1 में ये कहा गया है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग के अंदर मनुष्य थे, तो उन्हीं मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था। इसीलिए कहा जाता गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी बट गॉड इज वन। भगवान भगवती अनेक है, और उनको भगवान टाइटल क्यों दिया गया, भगवान शब्द को अलग किया जाए, संधि विच्छेद किया जाए तो भगवान यानी भाग्यवान। भाग्यवान कि जिन आत्माओं ने भाग्य विधाता से श्रेष्ठ भाग्य आशीर्वाद रूप में प्राप्त किया था, ऐसी भागवान आत्माएं उस युग में निवास करती थी। तो गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, इससे पता चलता है कि चक्र घूमता है। उसी को ही गुरु नानक देव ने कहा बहुत सुंदर अपनी गुरुवाणी में कि मानुष्य से देवता की करत न लागी वार। परमात्मा को मनुष्य को देव बनाने के लिए किए करत न लागी वार, देर नहीं लगी। उसी को ही हिंदू धर्म में कहा गया है नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग, तो कलयुग में नर और नारी थे, वो नर और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बन जाते। हर धर्म में ये चक्र इनडायरेक्ट वे में बताया है कि कैसे चक्र रिपीट होता है, कि चक्र कैसे घूमता है, कलयुग के बाद सतयुग कैसे आता है। ऐसी करनी मनुष्य की जब होने लगती है तब परमात्मा का वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है जिससे वो नर और नारी भागवान भागवान भगवती बन जाते हैं। उस दुनिया का गायन है कि वो दुनिया के लिए कहा जाता है कि जहां शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, इतनी अहिंसा थी, वातावरण के अंदर इतना शुद्ध और पवित्रता थी, कोई भी प्रकार का असत्य हिंसा का नामो निशान नहीं था, सुख शांति जहां व्याप्त थी, जहां हर रीति से हर आत्मा समृद्ध रूप में थी, और जहां पर पवित्र आत्माएं जब इस धरा पर नीचे उतरती है तो कोई ना कोई देव या देवी के रूप में वस्त्र धारण करती है, और इस तरह से पूरी एक दैवी दुनिया आ जाती है जहां श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। इसीलिए कहा कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जहां राज करते थे। कैसे पता चला कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण सूर्य नारायण इसीलिए कहा जाता है कि जो सतयुग के राज्य करता, जो सूर्य वंशी थे, इसलिए सूर्य नारायण या सत्य नारायण कहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा त्रेता। त्रेता माना जहां थोड़ी त्रुटि आ गई, स्वास्तिका का हाथ नीचे गिरता है जिसको कहा जाता है चंद्रवंश, जहां 16 कला संपूर्णता से 2 कला कम हुई, सीढ़ी आत्माएं नीचे उतरी, पवित्रता सुख शांति समृद्धि उस दुनिया में भी है परंतु सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला कि श्री राम का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, सूर्य नारायण, रामचंद्र। त्रेता युग को कहा गया चंद्रवंश। इसीलिए दिखाते कि श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग प्रारंभ हो गया, जिसको कहा त्रेता युग, जहां थोड़ी त्रुटि आ गई। 16 कला से 14 कलाधारी बने। कई लोग सोचते हैं 16 कला कौन सी है? कोई गिनती की कला नहीं होती है, 16 फिगर परफेक्शन का है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते हैं? 16 नहीं, सच है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा देखो तो क्या कहते हैं? 16 कला संपूर्ण है। तब मनुष्य को यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो 2 कला कम होना पड़ा, 16 कला से 14 कलाधारी बने। हमने पहले ही कहा यह सृष्टि कुदरत के नियम में चलती है, और कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज सदा स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रह सकती है। आज मकान नया होता है, खंडर अपने आप बन जाता है। विज्ञान का एक नियम है, लॉ है। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एंट्रोपी, और लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। कोई भी चीज नहीं होती, पुरानी अपने आप होती है। पुराने से नया बनाना पड़ता है, पुराने से नया अपने आप नहीं होता है, नए से पुराने अपने आप हो जाते हैं। मकान नया है, खंडर अपने आप बन जाता है, खंडर से नया मकान बनाना पड़ता है। कुदरत का ये नियम है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप आती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। और कुदरत का ये भी नियम है कि कोई भी चीज सदा स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रहती है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहता है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा आरंभ हो जाती है। और अमावस्या में कितनी देर रहता है? एक घड़ी। फिर उसकी पूर्णमासी की ओर यात्रा चालू हो जाती है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है, जिस नियम से यह संसार को भी गुजरना ही पड़ता है। चाहे वो सतयुग क्यों ना हो, सतयुग भी सदा सतयुग नहीं रह सकता है, कुदरत का नियम नहीं है। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। और इस तरह से धीरे धीरे 16 कला से 14 कलाधारी बने। अब यहां पर जो डार्विन का प्रिंसिपल है, मॉडर्न साइंस ने भी उसको गलत ही एक हाइपोथेसिस ही बता दिया, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड अपने आप नहीं होता है। बंदर से मानव यानी डिसऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। इसीलिए भगवान आकर के रिवील करते हैं ये सीक्रेट कि जो सतयुग के देवता थे फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू मनुष्य डिसऑर्गेनाइज्ड, ये कुदरत का नियम। तो हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज देवताएं थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन एंड संपूर्ण, 16 सेलेशियल डिग्रीज कंप्लीट। वहां से धीरे धीरे समय के अंतराल में इस चक्र से हम गुजरते गए, और धीरे धीरे आज जो स्थिति आई है डिसऑर्गेनाइज्ड है ना, डिसऑर्गेनाइज्ड स्थिति है। अब परमात्मा कर फिर से नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। अब पुनः मनुष्य से देव, फ्रॉम मैन इनटू हिज ओन इमेज ट्रांसफॉर्म करते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और जब परमात्मा ने जब ये बताया कि ये चक्र घूमता रहा, आगे बढ़ता रहा, द्वापर से त्रेता से धीरे धीरे द्वापर युग में आए। यहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर चला जाता है। राइट हैंड प्रतीक है राइटियसनेस के, जहां हर मनुष्य राइटियस कर्म ही करते थे, लेकिन द्वापर युग जब आए तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ गए, यानी राइटियसनेस टू अनराइटियसनेस, ये पाथ पर आगे बढ़े। सत्यता माना एकता, एकता का युग था, लेकिन द्वापुर, द्वापुर यानी जहां से दो पुर आरंभ हुए, यानी सत्य के साथ असत्य का पाथ भी आरंभ होता है। और उस कारण मनुष्य आत्मा में कलह क्लेश मतभेद आरंभ होता है। जो एकता थी वो एकता समाप्त हुई और द्वापुर द्वैत भावना की प्रवेशता होती है, मतभेद आरंभ होता है। इसलिए सत्ययुग और त्रेतायुग को कहा जाता अद्वैतता का राज्य, लेकिन जब द्वापर आया तो द्वापर से द्वैत आरंभ हुआ, और जब द्वैत आरंभ हुआ तो मतभेद लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश आरंभ हुआ। फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज टू अ डिसऑर्गेनाइज स्टेज के तरफ जा रहे, और जब इस स्टेज में गए तो दुख अशांति आरंभ होती है। सत्ययुग और त्रेतायुग में तो सुख शांति थी, तो दुख अशांति आरंभ होती है। और उसी के लिए कहा जाता दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो 5000 साल से 2500 साल समाप्त हुआ, और 2500 साल के बाद जो पीरियड आया वो दुख और अशांति को लेकर के आया, जहां मनुष्य आत्मा गिरावट की ओर चलते गए। इसीलिए क्रिश्चियन धर्म में लिखा है कि एडम एंड ईव देवर इन पैराडाइज, पैराडाइज में रहते थे, लेकिन जब द्वापर युग आया द फॉरबिडन फ्रूट उन्होंने खाया। और फॉरबिडन फ्रूट कौन सा था? बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस समाप्त हुई, बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, वहां से दे वर कर्स्ड, और कर्स्ड इसीलिए सीढ़ी नीचे उतरते गए। द्वापर युग से गिरावट आरंभ हुई, और इसीलिए इस युग में भगवान का परिचय नहीं है, भगवान कौन है मालूम ही नहीं है, तो किसको भगवान माने। तो जैसे आज की दुनिया में कई संतों के भी मंदिर बनते हैं, उनकी भी पूजा होती है मंदिरों में। अगर पूछा जाए ये संत तो हमारे जैसे इंसान हमारे युग में पैदा हुए, फिर उनके मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हमसे तो वो श्रेष्ठ है, हमसे तो अच्छे हैं, पूजनीय है, इसलिए उनके मंदिर बना करके पूजा की जाती है। तो इसी तरह जो आत्माएं द्वापर युग में थे उनसे पूजनीय कौन थे? सत्ययुग और त्रेतायुग के देवी देवताएं। इसलिए उन देवी देवताओं की यादगार जो ताजी थी स्मृति के अंदर, उनके मंदिर बना करके पूजा आरंभ किया। तो द्वापर युग में जब मनुष्य आत्माएं दुख और अशांति का अनुभव करती है तो उस समय भगवान का सत्य परिचय नहीं है, लेकिन भगवान को याद करते हैं, तो पूजा पाठ आरंभ करते हैं, वो देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए और उन देवी देवताओं की पूजा आरंभ करते हैं। क्योंकि जो श्रेष्ठ स्थिति थी सोल कॉन्शियसनेस की, दिव्यता की, वहां से बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो गिरावट आने लगी जीवन के अंदर। इसी समय में शास्त्रों का निर्माण होता है, मंदिर बनाए जाते हैं, पूजा पाठ की रीति रसम बनाई जाती है और इस तरह से यह द्वापर युग आरंभ होता है। सर्वप्रथम जो मंदिर बनाए उस समय के राजाओं ने शिव के मंदिर बनाए। अनजानेपन में भी हर राजा के महल में शिव का मंदिर होता था। उसके बाद देवी देवताओं के मंदिर बने और इस समय में संतों के मंदिर बने और आज तो नेता अभिनेताओं के मंदिर बनने लगे, है ना? गिरावट कैसे आती गई। और इस तरह से जब शिव के मंदिर बने परंतु शिव का सत्य परिचय नहीं था। पुकारा जरूर, अखर परमात्मा को पुकारा है तो भगवान बच्चों की प्रार्थना को अनसुना थोड़ी करेगा। इसलिए उस समय संसार के अंदर कुछ महान आत्माएं आती है जो अपने अपने धर्मों की स्थापना करती है। और सबसे पहले भारत से बाहर इब्राहिम आते हैं जिसने इस्लाम धर्म को स्थापन किया। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं जिसने बौद्ध धर्म को स्थापन किया। और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं जिसने क्रिश्चियन धर्म को स्थापन किया। ऐसे भारत से बाहर ये तीन महान धर्म पिताएं आते हैं जिन्होंने अपने अपने धर्म को स्थापित किया। और भारत में हर स्टेट में कोई ना कोई महान आत्मा का जन्म होता है। और उस समय उन्होंने कुछ प्रचार किए। कोई भी धर्म के ओरिजिनल सिद्धांत अगर देखे जाए तो कोई धर्म बुरा कर्म करना नहीं सिखाता, कोई धर्म पाप करना नहीं सिखाता, कोई धर्म चोरी करना नहीं सिखाता। तो बेसिक प्रिंसिपल्स हर धर्म में के एक जैसे हैं। परंतु जिस समाज में ये लोग गए वो समाज की कुछ कुरीतियों को देखा और उन कुरीतियों को देखकर उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए। ये प्रचार अलग अलग हो गए और उस तरह के वो धर्म बनने लगा। जैसे जहां इब्राहिम गए थे वहां के समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो उस समाज में जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे। तब उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने उन संदेशों को समझा नहीं, बस इस भाव में आ गए हमारा धर्म अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारे धर्म में ये मेरा और तेरा, हमारा तुम्हारा, ये भावना विकसित होने लगी। इसी तरह जहां महात्मा बुद्ध गए थे वहां के समाज की व्यवस्था कैसी थी, उस समाज में उन्होंने भी कुछ बातों को देखा जिस आधार पर उन्होंने प्रचार किया। उन्होंने दो बातों को देखा जिन दो बातों पर उन्होंने प्रचार किया। सबसे पहले देखा उन्होंने कि उस समाज में दया नाम की चीज नहीं है और दूसरा देखा कि मनुष्य के कर्म भ्रष्ट होने लगे हैं। तब इन्हीं दो बातों पर उन्होंने प्रचार किया, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो और कर्म ही धर्म है। लेकिन अफसोस इस समाज के लोगों ने इस संदेश को समझा नहीं और इसीलिए दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। लेकिन आज कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ, क्या खाते हैं वो लोग, क्या खाते हैं? नॉनवेज तो खाते ही है, वो तो कई लोग खाते हैं, लेकिन ये चाइनीज कॉन्टिनेंटल में क्या मिलेगा आपको, जो दुनिया में कोई नहीं खाते ना वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता। कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी। महात्मा बुद्ध को बहुत मानते, गली गली में आपको महात्मा बुद्ध का मंदिर मिलेगा। महात्मा बुद्ध को मानते, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते, है ना। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, उसको नहीं मानते हैं। तो जब हांगकांग की चौपाटी पर गए, जैसे बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है, ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है, जहां अलग अलग स्टॉल लगे हुए रहते। हमारा एक कार्यक्रम था, आइलैंड पर जाना था हमको, तो कार पार्किंग करके उस चौपाटी से हमें 10 मिनट गुजरना पड़ा उस बोट लेने के लिए। तो जब उस चौपाटी से गुजरे, वहां का दृश्य मुझे कभी भूलता नहीं है। वहां मैंने देखा कहीं तो रंग बिरंगी सांप लटक रहे हैं, और बड़े तवे पर उसको फ्राई करके सर्व किया जा रहा है, और मनुष्य बड़े चाव से वो सांप को खा रहा है। कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी, कहां देखा तो बिच्छू की सब्जी बनाई जा रही थी, कहां देखा तो कुत्ते का घोस्ट बल, माना जो दुनिया में कोई नहीं खाते वो ये लोग खाते, है ना। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मुझे महसूस हुआ 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस इन्होंने तो समझा ही नहीं। आजकल आपने इंटरनेट के माध्यम से देखा होगा, ताइवान के अंदर मनुष्य के बच्चे, छोटे छोटे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है, जहां उस बच्चे को बेक किया जाता है, फ्राई किया जाता है ना। छोटे से बच्चे को खाने में मनुष्य हिचकिचाता नहीं है, ऐसा हैवान बन गया है। प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है ही नहीं, लेकिन आज मनुष्य को खाने में हिचकिचाए नहीं, है ना। और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हम, ये बच्चों के जीने के राइट्स कहां गए? उसके लिए यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं कुछ कर रहा है? कुछ नहीं। अफसोस, महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। इसी तरह जहां जीसस गए थे, वहां के समाज की व्यवस्था क्या थी, तो जीसस ने भी दो बातों को देखा जिस पर उसने अपने प्रचार आरंभ किए। उसने देखा कि मनुष्य जीवन में इतना झूठ व्याप्त है, और दूसरा उन्होंने देखा कि मनुष्य के प्रति नफरत करता है। तब उन्होंने यही दो बातों पर शिक्षा दी, सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है, लव thy नेबर एज यू वुड लव thyself। सेल्फ, ये उनकी शिक्षा रही। लेकिन अफसोस, जीसस को मानते हैं, जीसस की नहीं मानते हैं। और सत्य और प्रेम का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया, उसी को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। सारी दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शेंगे तो बाकी किसको बख्शेंगे। और इसीलिए जहां पर भी दुनिया में ये लोग चले गए, वेस्टर्न दुनिया के लोग गए थे वहां व्यापार करने के लिए, परंतु झूठ का इस्तेमाल करके, नफरत की भावना बो करके, वहां के राजाओं को, प्रजाओं को लड़ा करके, मतभेद क्रिएट करके पूरे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया, क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। नफरत के बीज ऐसे बोए के किसी बात पर समाधान ही नहीं होता है। भाई भाई लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है मालूम नहीं, लड़ रहा है ना। खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, लेकिन ये जहां भी चले गए, कहीं नॉर्थ साउथ कर दिया एक ही देश को, कहां ईस्ट वेस्ट कर दिया, कहां दो देश ही बना दिए। आज दुनिया में 350 लड़ाइयां चल रही है, उन्हीं देश की बॉर्डर्स पर चल रही है जिस देश के दो टुकड़े हुए हैं, उन्हीं देश की बॉर्डर्स पर चल रही है। भाई भाई लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है मालूम नहीं है। इसीलिए कहा जीसस को मानते हैं, जीसस की नहीं माना, है ना। और इस तरह से धीरे धीरे ये समय आगे बढ़ता गया। सृष्टि नाटक का चौथा भाग आया, हिस्ट्री को भी साथ में, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू 5000 हो तो फिर हिस्ट्री को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा कि क्राइस्ट को हुए कितने साल हुए, द्वापर में हुए, ये सब महान आत्माएं। तो इसीलिए एक एक युग लाखों साल का तो हो ही नहीं सकता है, नहीं तो आज ये संसार की हालत कौन सी गति को हो जाती थी। तो इसीलिए जैसे जैसे कलयुग आया, स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड ऊपर उठता है। ऊपर उठता है माना हर प्रकार की बुराई अपने क्लाइमेक्स की स्थिति पर जाती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, अति भ्रष्टाचार, अति। और जब ऐसी कलह क्लेश वाली दुनिया हो जाती है जहां हर प्रकार की अति हो जाती है, घर घर के अंदर महाभारत आरंभ हो जाता है, तब भगवान ने भी जो वायदा किया है उस वायदे के अनुसार इस संसार में उसको भी आना पड़ता है। इसीलिए इस कलयुग को दूसरे शब्द में हम कहते हैं रावण राज्य है। रावण राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास, विद्वता थी, शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र उसको प्राप्त थे। रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं, खूब तपस्या करते, खूब भक्ति करता था, वो भी शिव की भक्ति करता था। और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी उसकी। यानी जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, चारों ही रावण के पास थी। लेकिन फिर भी रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि दो बातों की कमी थी उसके जीवन में, दो कमजोरियां थी जिस कारण सर्वनाश हुआ। और वो दो कमजोरी कौन सी थी? अहंकार चरम सीमा पर था, और दूसरी कमजोरी अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता उसके जीवन में आ गई। ये दो बातों के कारण उसका पतन हुआ, उसका सर्वनाश हुआ। तो आज की दुनिया भी रावण राज्य है। क्यों? क्योंकि आज सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी कौन है? मनुष्य। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं। मनुष्य भी अपनी बुद्धि की शक्ति से आकाश मार्ग से ट्रेवल करता है, रावण की तरह समुद्री मार्ग से जाता है, सब मरीन के द्वारा जाता है कि नहीं जाता है, अपनी बौद्धिक शक्ति से ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली उसने भी। मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, मिसाइल पावर है उसके पास, अग्नि अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र उसके पास भी है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, एक गली में 20 मंदिर जरूर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? 20 मंदिर भी कम होंगे, इतनी भक्ति कर रहा हर मंदिर के अंदर जाता है, खूब भक्ति कर रहा है। मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं, रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा फ्लाइट से देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। हाँ, पूरी सोने की नगरी है ना। लेकिन आज मनुष्य भी किस ओर बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी दो कमजोरी आ गई है। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर है, और दूसरी अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता आ गई है, इसीलिए सर्वनाश की ओर जा रहा है। ऐसा रावण राज्य, रावण राज्य मशहूर किस लिए? सीता जी के कारण है कि सीता जी अशोक वाटिका में थी, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी शोक में, अशोक वाटिका में सीता जी बैठी थी शोक में। आज की भौतिक दुनिया अशोक वाटिका की तरह है, लेकिन अशोक वाटिका में हर इंसान शोक में है, दुख दर्द का अनुभव कर रहा है, स्ट्रेस डिप्रेशन का अनुभव अवसाद उसके जीवन में आ गया है, जहां हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करता है। किसी को व्यसनों का बंधन है, किसी को बुरी आदतों का बंधन है, किसी का बुरा स्वभाव संस्कार का बंधन है, हर बुराई अपनी चरम सीमा पर है। जहां मनुष्य आत्मा सिर्फ अपनी कर्मेंद्रिय का गुलाम नहीं लेकिन विकारों का गुलाम बन चुका है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ उसका गुलाम बन गया है, और उस गुलामी के कारण उसकी शक्ल तो देखो कितनी विकृत होती जा रही है। ऐसी विकृति जब उसके जीवन में आ जाती है, जब न खुद को जानता है न खुदा को जानता है, न खुद का परिचय है मैं कौन हूं, न खुदा को जानता, खुदा को कहां ढूंढ रहा है, कहां देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो पहाड़ों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है, कहां कहां ढूंढ रहा है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब भगवान को भी इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं कलयुग तो भी बच्चा है, 432,000 साल में 40,000 साल खाली बीता है। अब सोचने की बात है कि अब 432,000 साल का कलयुग हो, कोई हिसाब बैठता है? कोई हिसाब नहीं बैठता है। और 40,000 बीता हो और अभी इतनी अधोगति हो तो अभी और बाकी जो लाखों साल पड़ा है उसमें हालत क्या होगी, क्या होगी? इसीलिए कलयुग अभी बच्चा नहीं है, अभी थोड़ा सा बचा है, बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना। दूसरा भी एक गीत याद आता है मुझे, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा। हाँ, और वो सारे जो लक्षण बताए हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अधर्म के लक्षण, वो सब इस समय मौजूद है, दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। तब कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, फिर कितना समय बाकी रहा, कितने साल बाकी रहे? हाँ, भगवान ने अगर आप लोगों को सारा ज्ञान दे दिया फिर तो ये दुनिया अभी कब बदलने वाली है ये भी बता दिया होगा। हम यही कहते हैं, भगवान ने सारा ज्ञान दिया लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया जो डेट नहीं बताई। आज अगर किसी को भी कहा जाए 24 घंटे हैं, जितना भगवान का नाम लेना चाहो ले लो, कितना लेंगे? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? एक एक घड़ी बीतेगी इतना टाइम कॉन्शियस हो जाएगा, कितना बचा है, कितना बचा है, कितना, कुछ भी ना भगवान का नाम ले सकता है। उसको कहो चलो भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, कोई अच्छा कर्म तो करो, दान करके पुण्य तो कमा ले, दान भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 24 घंटे के बाद नहीं मरा तो डाउट है ना, भरोसा नहीं है भगवान पर, समय पर, समय पर भरोसा नहीं है। इसीलिए न दान करके पुण्य कमा सकता है, न भगवान का नाम ले सकता है। इसीलिए भगवान ने यही कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है अभी। सारा कुछ तैयार है, मिसाइल सारे कंप्यूटराइज कंट्रोल है, एक बटन दबाने की देरी पर आकर के पहुंचा है। अब कोई व्यक्ति जो वहां बैठता है कंप्यूटर के पास में, देखने के लिए कहां से मिसाइल आए कि नहीं आए कि नहीं, और एक दिन उसको सिजोफ्रेनिक अटैक आए तो क्या करेगा? दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको, कितनी देर लगेगी? इसीलिए कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है। वैज्ञानिक लोग चिंतित हो रहे हैं। दुनिया भर में एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस जब होती है तो उसमें एक ही टॉपिक होता है कि दुनिया का एनवायरमेंट इतना इम्बैलेंस्ड हो गया है, जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना होल हो गया है ओजोन लेयर में, और ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है कि जहां ऑक्सीजन ही नहीं, कॉन्क्रीट जंगल्स खड़े हो रहे हैं। एक बार यहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था, उनसे बातचीत करते हुए हमने एक सवाल पूछा उनको कि जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितने परसेंटेज फॉरेस्ट होने चाहिए? तब उन्होंने कहा ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। हमने पूछा कितने फॉरेस्ट है, तो कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गए तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अब 11 से 9 होने में कितनी देर लगेगी? 3,00,000 साल लगेंगे। इसलिए कहा एक्स इज इक्वल टू 5,000, बैठ जाता हिसाब, 5,000 साल के अंदर ये गति हो गई है। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन का सोर्स ही कट रहा है, उन्होंने कहा रात्रि के समय में ऑक्सीजन की मात्रा सुबह 3-4 बजे के बीच में, 2 बजे से 4 बजे के बीच में, देयर इज ओनली 2%, हार्डली 2% ऑक्सीजन रात्रि के समय में, क्योंकि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन खींचते हैं, तो रात्रि के समय में इसीलिए लोगों को साइलेंट अटैक आता है, या इसीलिए अस्थमा अटैक आता है। आजकल अस्थमा कितना बढ़ता जा रहा है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं है। इसीलिए कहने का भावार्थ कि आज ये प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति के कारण ही बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहे हैं, सुनामी लहरें उठ रही है, ज्वालामुखी फट रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, और जो मिसाइल्स बनाए हैं उस मिसाइल्स का भी प्रयोग तो होगा या नहीं होगा? तभी किसी ने सही कहा है, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। आज यूनाइटेड नेशन ट्रीटी साइन करा रही है लोगों से प्रपोजल की, डिसआर्मेंट होना चाहिए, लेकिन मैन प्रपोजेस, अभी गॉड को यह सृष्टि डिस्पोज कर देने की है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है, और परमात्मा के उस वायदे के अनुसार इस संसार में मैं अवतरित होऊंगा, यदा यदा ही धर्म सृष्टि पर भी, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देते हुए भगवान यही कहते हैं, नाउ वी आर ऑन अ रिटर्न जर्नी, अब वापस घर चलना है, घर जाने का समय आ गया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हो रही, अकॉर्डिंग टू गीता ब्रह्मा का दिन सत्युग और त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ब्रह्मा की रात्रि भी समाप्त होने आई है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है, तो घर तो जाना पड़ेगा हर एक को। घर जाने के बाद रेस्ट करके फिर नई दुनिया में आना है, सतयुगी दुनिया में आना है। लेकिन जब भगवान इस समय संसार में आते हैं तो जैसे वो धर्म पिताओं ने भी दो दो बातें कही सिर्फ, लेकिन अफसोस वो समाज के लोगों ने समझा नहीं। इसी तरह भगवान भी सिर्फ दो बातें कहते हैं, सिर्फ दो बातें, लेकिन अफसोस आज के समाज के लोग भी उन दो बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। कौन सी दो बातें भगवान कहते हैं? भगवान दो बातें यही कहते हैं, आत्म शुद्धिकरण करो, और उस आत्म शुद्धिकरण के लिए योगी बनो, पवित्र बनो। परंतु जब ये दो बात कहते हैं तो लोग हमसे क्या कहते हैं? अरे बहन जी, सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने लिया है क्या? वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको पता है दुनिया कैसे चलानी है, हम क्यों चिंता करें? समय का संकेत भी दे रहा है भगवान, उसके लिए समय भी हमें संकेत दे रहा है, योगी बनो, पवित्र बनो। कैसे समय का संकेत मिल रहा है? आज सबसे नंबर वन पर जो बीमारी दुनिया में है कौन सी है? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए समय भी हमें संकेत दे रहा है, आत्म संयम को धारण करो। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य विपरीत दिशा में चल रहा है तो सर्वनाश ही होगा, क्या होगा? यही सर्वनाश का कारण, परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से आरंभ हो जाएंगी और प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ परिवर्तन की प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे और इस प्रकृति को भी खींच करके ले लेंगे वापस। यही प्रकृति का नियम है, जो उसे दिया है वापस उसको लेना है। इसीलिए समय के संकेत को समझो, चलो परमात्मा का ना समझो, समय का संकेत उसे समझो। एक बार हमारा एक कार्यक्रम था कहीं पर, सप्ताह थी, 7 दिन की प्रवचन माला थी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, काफी लोग आते रहे। जब अंतिम दिन आया, 7वां दिन, एक बुजुर्ग भाई खड़े हुए, कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा ये स्टेज पर आए? उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार जीवन में पहली बार ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कहना चाहती है उसको अच्छी तरह से सुना और समझा, और मुझे उनकी एक एक बात में इतनी सत्यता नजर आती है। परंतु आज दिन तक हम उनसे दूर भागते रहे हैं। जिस गली में इनका सेंटर होता था उस गली से गुजरते नहीं थे हम लोग। मैंने कहा ऐसी क्या भाई है बात हो गई जब उस गली से भी नहीं गुजरते थे? तो कहने लगे ये ब्रह्मा कुमारियों के विषय में गलत फहमी समाज में फैली हुई है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, हमें भी पता हो क्या हमारे बारे में गलत फहमी फैली हुई है? तो कहा इनके बारे में गलत फहमी यही है कि ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती है, इसीलिए लोग वहां से गुजरते नहीं। हमने कहा ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाएंगे? हम क्यों बनाएंगे? आप लोग भी जब यहां आए होंगे तो लोगों ने कहा होगा वहां जा रहे हैं ठीक ठाक वापस आना। वहां जाना देखना, लेकिन उनकी कोई भी बात को धारण करके नहीं आना, है ना, छोड़ करके ही आना वहां पर। हमने पूछा कि ऐसी क्या बात है भाई, हम तो किसी को ऐसा नहीं कहते कि भाई बहन बन जाओ। फिर मुझे महसूस हुआ, मैंने उस भाई से कहा एक बात बताओ, आप रोज मंदिर जाते थे? कहा रोज मंदिर तो रोज नियम से। मैंने कहा आप अकेले जाते, अपनी पत्नी को भी साथ ले? बोले मैं और मेरी पत्नी दोनों ही जाते थे। मैंने कहा फिर एक प्रार्थना तो गाई होंगी आप सभी ने? बोले कौन सी? मैंने कहा भगवान से आपने कहा होगा तुम माता पिता हम बालक फिर? बोले हाँ कहा। तो मैंने कहा आपने अकेले ने कहा या पत्नी ने भी कहा? कहा पत्नी ने भी कहा। मैंने कहा उस समय कौन बन गए थे? आपकी पत्नी को ये कहना चाहिए कि मेरे पति के माता पिता तो मेरे सास ससुर, कभी कहा भगवान को ऐसा? जब दोनों मिल करके ये गा रहे थे प्रार्थना के तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो कौन बन गए थे? और ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी, तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करें? ब्रह्मा कुमारियां तो ऐसी कोई बात नहीं सिखाती है। हाँ, हम परमात्मा क्या संदेश जरूर देते हैं, करना न करना आपके ऊपर है। संदेश मिल गया ताकि कोई हमें ये न कहे ऊपर जाकर के कि ब्रह्मा कुमारियों को मालूम था लेकिन उन्होंने हमको बताया ही नहीं। इसीलिए समय का संकेत हम जरूर बताते हैं, करना न करना आपका काम है। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु, तुम तो सब कुछ जानते थे, जानी जाननहार थे, फिर आपने आकर के हमें क्यों नहीं बताया? इसीलिए हम उसके मैसेंजर बन करके आपको मैसेज दे रहे हैं, करना न करना आपके ऊपर है, लेकिन फिर भगवान को दोष नहीं देना। समय का दूसरा संकेत भगवान ने तो दिया, समय का पहला संकेत बीमारी इस तरह से फैलती जा रही है। समय का दूसरा संकेत, न्यूज़पेपर तो रोज पढ़ते हैं, एक खबर हर रोज छपती है। कौन सी खबर हर रोज छपती है? कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य, रोज छपते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते समय आपको कैसा महसूस होता है? क्या निकलता है? क्या कलयुग आ गया? यही कहते हैं ना। अब ऐसे जब घटनाएं रोज छपती है, उस समय का इलाज क्या है? उस समय का, उन घटनाओं का इलाज क्या है? शास्त्र में ये बात आती है कि रावण जैसा, रावण इतना शक्तिशाली था, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, अपने बगीचे में रखा, महल में नहीं रख सका। क्यों? सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका, जिसको उठा करके सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया कि हे रावण, इस घास के तिनके से आगे तुमने कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी शक्ति है। कौन सी शक्ति थी? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी। क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है कि वो जानी जाननहार है। क्या जानते हैं भगवान? क्या जानते हैं भगवान? समय को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये समय कौन सा है, और इसीलिए ये समय की जो बातें होने वाली है उसको भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समय किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए भगवान ने कहा योगी बनो, पवित्र बनो। कई लोग हमसे पूछते ऐसे समय में भगवान मदद क्यों नहीं करते? अरे भगवान मदद करना चाहते इसीलिए तो कहते हैं, भगवान मदद करना चाहते इसीलिए कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, दुनिया में कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। शेरनी का दूध इतना शक्तिशाली होता है कि कोई ऑर्डिनरी बर्तन अगर हो तो फाड़ देता है, बर्तन फाड़ देता है, इतना पावरफुल दूध माना जाता है। इसीलिए उसको सोने का ही बर्तन चाहिए, यानी पात्रता। इसी तरह परमात्मा की शक्ति कितनी पावरफुल होंगी, कितनी हाई पावर की होंगी, अगर मनुष्य ऐसे ही उसको प्राप्त कर ले तो फट जाएगा, आधा हो जाएगा। इसीलिए उस पात्रता चाहिए, बुद्धि की पात्र, ताकि ईश्वर की शक्ति को ग्रहण कर सके और उस समय से पार हो सके। इसीलिए परमात्मा जब है ही परम पवित्र, तो परम पवित्र हाई वोल्टेज को अगर कैच करना हो, उसको स्वीकार करना है, तो बुद्धि भी इतनी शुद्ध और पवित्र सोने के बर्तन जैसी होनी चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान समय को जानता है कि आने वाले समय में, और ये तो आप सब भी ये जान सकते हैं, आपका विवेक भी कहता है कि आने वाले समय में ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। और जब कृत्य बढ़ेंगे तो उस समय से गुजरने का इलाज क्या है? इसीलिए भगवान कहते हैं योगी बनो, पवित्र बनो। अब समय को समझने के बाद भी नहीं करे तो फिर वो समय के हवाले है, समय उसको पाठ पढ़ाएगा। अब क्या करना है ये आपके ऊपर है। तो कई लोग कहते फिर दुनिया कैसे चलेगी। भगवान जानते थे कलयुगी मनुष्य हर बात में ये जरूर सवाल करेंगे, ये दुनिया कैसे चलेगी। आज से 2000 साल पहले जीसस का जन्म कैसे हुआ था। अगर एक वर्जिन मेरी बिना किसी भोग बल के जीसस को जन्म दे सकती है, 2000 साल पहले की बात है। इसीलिए भगवान भी जानते थे कि आने वाले समय में भी पवित्र विधि से उत्पत्ति होती है। हमारे शास्त्र में ये बात बताई है, पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे होती है। मंत्रों के बल से उत्पत्ति, यानी समय एक ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडु धृतराष्ट्र विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, श्री राम की उत्पत्ति कैसे हुई, यज्ञ के बल से उत्पत्ति हुई। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, योग बल से उत्पत्ति हुई, इसलिए उसको योगेश्वर कहते हैं। यानी समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य बदलता रहा है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, बाकी सदा काल ये संसार भोग बल से नहीं चलता है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा के पास फुल प्रूफ प्लान है कि आने वाले समय में उत्पत्ति का स्वरूप कैसा होगा। पवित्र विधि से उत्पत्ति होगी। कई लोग पूछते हैं फिर कैसे पता चले। भगवान जानते थे ये कलयुगी मनुष्य हर बात में सबूत जरूर मांगेंगे, इसीलिए उसने आज की दुनिया में भी एक सबूत रखा है कि मोर का पक्षी, अगर एक पक्षी पवित्र विधि से उत्पत्ति कर सकता है तो क्या इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने ताज में मोर का पंख सुशोभित किया, ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया था। ये श्री कृष्ण ने भी सम्मान दिया कि जितना परम पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है उतना ही पवित्र ये पक्षी है जो कलयुग के अंत में भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसीलिए श्री कृष्ण भी उसको सम्मान देकर अपने ताज में लगाते हैं। कहने का भावार्थ ये है कि पवित्र विधि से उत्पत्ति होती है, लेकिन अब किस्मत आपके हाथ में। किस्मत कैसे बनती है पता है, किस्मत। अब हमने आपको सारी बात बता दी, भगवान का संदेश भी सुना दिया, अब आपको किसकी मत पर चलना है, किस मत पर चलना है। भगवान की मत पर चलेंगे या दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले, किस मत पर चलना है। किस्मत आपके हाथ में है, ठीक है ना। भगवान जोर जबरदस्ती नहीं करता। इसीलिए कहा गया है दुनिया में आइदर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और आइदर यू आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको किस ओर जाना है, समस्या स्वरूप बनना है इस दुनिया के या समाधान स्वरूप की ओर जाना है, किस ओर जाना है। किस्मत आपके हाथ में है। आपको भाग्यशाली तो कहूंगी मैं कि ब्रह्मा कुमारियों बहनों ने भाइयों ने कई बार आपको माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया, हर बार आपने क्या कहा, अरे बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होंगी तो पहुंच जाएंगे। अभी जो आए किसकी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से, किसकी मर्जी से आए। अब यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे, अपनी मर्जी पर या ऊपर वाले की मर्जी पर। अब आपकी मर्जी होगी, अब ऊपर वाले की नहीं, अब आपकी मर्जी होगी कि आपको किस मत पर चलना है ना। क्योंकि तब आप भगवान को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं ना, वो इलेक्शन पर नहीं करते, सिलेक्शन पर करते हैं। उसने जरूर आप में कोई ना कोई ऐसी खूबी देखी होंगी जिस कारण आपको सिलेक्शन लिस्ट में तो ले लिया, लेकिन अब इस सिलेक्शन में रहना है या निकल जाना है, ये किसकी मर्जी होगी? आपकी मर्जी होगी। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु तू हमें भी सिलेक्ट करके तो देखता था, हम भी कोई कम थोड़ी थे। अब आपकी मर्जी कि आपको सिलेक्शन में रहना है या नहीं रहना है, है ना? लेकिन फिर भी मैं भाग्यशाली तो कहूंगी आपको। वो कहानी याद आती है जो अंत में सुनाना चाहती हूं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। जब नारद जी पहुंच गए तो भगवान एक डायरी देख रहे थे, तो नारद जी ने देखा कि भगवान डायरी देख रहे हैं। पूछा, भगवान क्या है इस डायरी के अंदर जो इतना ध्यान से आप देख रहे हैं? तो भगवान ने कहा, मेरी खास डायरी है, तो खास डायरी में तो खास बातें लिखी होंगी। पूछा, क्या लिखा है इसमें भगवान? तो भगवान ने कहा, इसमें कुछ नाम लिखे हैं। नारद जी ने पूछा, किसके नाम लिखे हैं? भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी बड़े खुश हो गए, भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा क्योंकि मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता है। भगवान ने कहा, तेरा नाम सबसे पहला नंबर, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई, कहा, मैं डायरी देख सकता हूं? कहा, देख लो। देखा, पहला नाम देखा खुद का, बड़ा खुश हुआ। आगे देखने लगा भगवान ने किस किस के नाम लिखे, ढूंढने लगा इसमें हनुमान जी का नाम कहां है, तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना, डायरी भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को, तो देखा हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम ले रहे थे। नारद जी ने वहां पहुंचकर कहा हनुमान जी से, ये सारा ढोंग बंद करो। कहा, क्यों? कहा, भी मैं भगवान की खास डायरी देखकर आया हूं जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे हैं जो उनको बहुत याद करते, और मेरा नाम सबसे पहला नंबर था और आपका नाम तो था ही नहीं सारी डायरी में। अब हनुमान जी जलने वालों में से थोड़ी है। उसने कहा, मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता हूं, मैं उसके दिल में रहता हूं। नारद जी क्या कहते हैं, वहां से चले। फिर थोड़े दिन के बाद घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए, तो भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। देखा, ये डायरी तो अलग लग रही है। तो नारद जी ने पूछा, भगवान ये डायरी तो अलग लग रही है? कहा, ये मेरी पर्सनल डायरी है। तो कहा, ये पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा, इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। कहा, किसके नाम लिखे हैं भगवान? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता। तो नारद जी ने कहा, आप भी याद करते हैं, मैं डायरी देख सकता हूं, किसको याद करते? कहा, देख लो। तो जब देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी के नाम ही नहीं था। भाग्यशाली कौन, जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो? जिसको भगवान। तो आप सबका नाम कौन सी डायरी में पता है? पर्सनल डायरी में है। भगवान ने याद किया तब यहां पहुंचे हैं। दुनिया में भगवान को याद करने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान जिसको याद करे वो यहां पहुंचे हैं। तो महान भाग्यशाली नहीं हुए? हाँ, लेकिन अब इस डायरी में नाम रहने देना है कि कटवा देना है, ये किसकी मर्जी होगी? हाँ, अभी आपकी मर्जी है ना, क्योंकि आप यहां से जाकर के फिर अभी जो करेंगे, फिर लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया, है ना? अगर ऐसा जादू लगे तो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना। सत्य ज्ञान जहां प्राप्त हो रहा हो, और सत्य ज्ञान को अगर लोग जादू कहते हैं, तो ऐसा जादू तो कौन सा बुरा है जो जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है, अच्छी दिशा दे रहा है, तो ये जादू लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? सबको लगाना चाहिए। देखो कितना अच्छा, फिर तो हम और बदनाम हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, है ना? तो इसीलिए महान भाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली आप सभी हो जो यहां पहुंच गए। और परमात्मा क्या क्या इंटेंशन है आपको बुलाने के पीछे, उसको समझा। ठीक है, अब समय, समय का चक्र घूम रहा है, इसीलिए आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। ठीक है, ऑप्शन।